आज की सभा में हम आदरणीय भाई साहब का करतल ध्वनि से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आदरणीय भ्राता जी को साकार मम्मा बाबा की पालना मिली है। हमारा सौभाग्य है कि ऐसे भ्राता जी जिन्होंने 18 जनवरी को लास्ट जब बाबा अव्यक्त हुए तब आप बाबा के सामने अंतिम समय पर रहे, आप हम ऐसी शख्सियत से मिल रहे हैं तो ये हमारा सौभाग्य है। हम बजा सकते हैं आप ताली खुलकर। आपको साकार मम्मा बाबा की पालना का सौभाग्य प्राप्त है। आपने 28 वर्षों तक ONGC में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के पद पर सेवाएं दी और फिर 1996 में वहां से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर बाबा की सेवाओं में पूर्ण रूप से आप समर्पित हो गए। आप लौकिक सर्विस के दौरान बाबा के कई सेवा केंद्र खोलने के निमित्त भी बने जिसमें बिहार, गुजरात, आसाम आदि हैं। RERF के आप गवर्निंग बॉडी के सदस्य हैं। वर्तमान में आप संस्था की मैनेजमेंट कमेटी के भी सदस्य हैं। आप साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग विंग के चेयरपर्सन हैं। ज्ञान सरोवर परिसर के अकेडमिक कोऑर्डिनेटर के पद पर भी आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपके निर्देशन में भारत व नेपाल में 22 से भी अधिक पर्यावरण जागृति और आपदा प्रबंधन अभियानों का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया। 1985 में अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष के दौरान आपके निर्देशन में भारत के विभिन्न प्रांतों से 12 पद यात्राएं निकाली गई। उस समय आप यूथ विंग के सचिव पद पर थे। आपने कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भी हिस्सा लिया है। आपने भारत सहित 20 से भी अधिक देशों में ईश्वरीय ज्ञान, अनेकानेक आत्माओं को बाबा का ज्ञान देने के निमित्त बने। आप पर्यावरण, शिक्षा, बच्चों के विकास और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में आपकी सेवाओं के लिए आपको कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। आपने 10,000 से भी ज्यादा लेक्चर्स लिए हैं। आपके लिए कहना चाहूंगी, ज्ञान की रोशनी से जीवन का अंधेरा आप मिटाते हैं। ज्ञान की रोशनी से जीवन का अंधेरा आप मिटाते हैं। राज्यों की गहराई से आत्मा को शक्तियों से सजाते हैं। साकार मम्मा बाबा के अनुभवों की निधि से, साकार मम्मा बाबा के अनुभवों की निधि से आत्मबल का दीप जलाते हैं। कमजोरियों से ऊपर उठकर सर्वशक्ति संपन्न बनने का मार्ग आप दिखाते हैं। सर्वशक्ति संपन्न बनने का मार्ग आप दिखाते हैं। तो आज हमें सर्वशक्ति संपन्न बनने की विधि बताएंगे आदरणीय भ्राता मोहन सिंगल जी।
ओम शांति। अभी पिछले लगभग एक डेढ़ घंटे से आप सब लोग जीवन की बहुत बहुत बड़ी बातें सुन रहे थे, विशेष करके दान के ऊपर कि दान किस प्रकार से, कितने प्रकार के होते हैं। मैं भी बीच बीच में आनंद ले रहा था क्योंकि यहाँ पर पहुँचना था और बाहर एक विशेष कार्य में संलग्न थे, तो मैंने देखा कि बहुत प्रैक्टिकल बातें आप लोगों को बताई गई और बाद में एक्सरसाइज भी आपने, और वो ये भी एक शक्ति होती है। बाबा भी कहता है एक्सरसाइज करने की शक्ति, ये आप सब लोगों ने देखा। वर्तमान समय डॉक्टर लोग भी कैसे बोलते हैं कि एक्सरसाइज करो। अब मैं विशेष करके, चूंकि बहन जी ने कई बार निर्देश भी दिए और कहा भी, तो आज के विषय को साकार मम्मा बाबा से संदर्भ में मिलाते हुए वो बातें पेश करना चाहूंगा जो हम सबका अल्टीमेट एम है, जैसा आज भी बाबा ने मुरली में बताया। क्या मुरली में बताया बाबा ने आज की मुरली में? हाँ, किस बात के ऊपर? हाँ, देह अभिमान कैसे सब बीमारियों की जड़ है और देही अभिमानी बनना है और कर्मातीत अवस्था। क्योंकि बहन जी ने एक बात को रिफर किया और कि ब्रह्मा बाबा की भी कर्मातीत अवस्था, हमें अंतिम दो दिनों में इन नेत्रों से देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ 17 और 18 जनवरी को। सुनते तो बहुत बातें हैं लेकिन प्रैक्टिकल में जब उस चीज को देखा जाता है तो वो अपना कितना असर छोड़ती है वो हमने देखा कि वो तो बहुत बहुत शक्तिशाली स्टेज है। ब्रह्मा बाबा एक ही आत्मा जो अभी तक कर्मातीत अवस्था को प्राप्त हुई है। तो 17-18 जनवरी के दिन बाबा के सम्मुख यहाँ मधुबन में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो वो सौभाग्य हम कभी नहीं भूल सकते और उसी रेफरेंस में हम मम्मा की भी एक बात बताना चाहते हैं। क्योंकि हम में से काफी लोग समझते हैं जो आत्मा एडवांस में चली गई कर्मातीत अवस्था को प्राप्त भी कर लिया, काफी हद तक नियरेस्ट टू कर्मातीत तक तो बने, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत बाकी रह गया था जो महान आत्मा एडवांस पार्टियों में गई है तो थोड़ा बहुत जो भी बचा उसको संपन्न करने के लिए उन्होंने यहाँ पर पुनर्जन्म लिए हुए हैं और वो संपन्न कर रही है। मामा की बात 1965, क्योंकि आज का सर्व शक्ति संपन्न बनने की बात है तो सबसे जितने भी हम सब लोग यहाँ बैठे हैं हम सब का लक्ष्य एक ये तो है कि हम कर्मातीत अवस्था को पाएं, संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करें। तो मामा के सामने भी यही प्रश्न था लेकिन 1965 में जब मामा की तबीयत काफी खराब चल रही थी और मामा ने जब शरीर छोड़ा तो सूक्ष्म वतन मामा पहुंची, वहां पर अव्यक्त बाप दादा सूक्ष्म वतन वासी ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा, वहां उनसे मामा से पूछा, मामा आपने कर्मातीत स्थिति का अनुभव किया है? तो मामा ने थोड़ा सोचा, फिर मामा ने कहा, नहीं बाबा मैंने तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव नहीं किया है, ज्ञान की देवी लेकिन सत्यता की भी देवी। और मामा ने नहीं किया था तो बाबा ने कहा, जाओ बच्ची अभी तुम्हारा शरीर वहां रखा है हिस्ट्री हॉल में, पांडव भवन में, तब तो वो ही था हिस्ट्री हॉल, वहां पर रखा है शरीर और ब्रह्मा बाबा, साकार ब्रह्मा बाबा और सभी जो भी ब्राह्मण वत्स हैं सब योग कर रहे हैं, तुम्हारा आवाहन भी कर रहे हैं। क्योंकि किसी को अंदर से विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मम्मा ऐसे चली जाएगी, पहले तब तो यही सबकी विचारधारा थी यज्ञ की कि हम सब लोग बाबा मम्मा और हम सब जितने भी ब्राह्मण वत्स हैं सब साथ में ही चलेंगे। लेकिन बात तो सही है, परम धाम तो साथ में ही जाना है, लेकिन उस समय मम्मा चली गई ये अंदर से एकदम किसी को विश्वास जैसा नहीं हो रहा था, सभी समझ रहे थे मम्मा आएंगी वापस। तो ऊपर से जब बाबा ने भेजा कि जाओ बच्ची तुम्हारा शरीर वहां पर है और उस शरीर में प्रवेश करके तुम कर्मातीत अवस्था को का अनुभव करके आओ। तो मामा को भेजा, मामा नीचे आई, मामा की आत्मा, और काफी देर तक नीचे रहे। और उसके बाद जब मामा ऊपर गए वापस सूक्ष्म वतन में, तो फिर बाबा ने पूछा कि बच्ची अनुभव करके आई उस अपने शरीर में कर्मातीत स्थिति का? तो मामा ने कहा कि नहीं बाबा, मैं तो अनुभव नहीं कर सकी। क्यों बच्ची? उसके लिए तो तुम्हें भेजा था कि बाबा मैं नीचे गई, मैंने बहुत प्रयास किया कि मैं शरीर में प्रवेश कर सकूं। बहुत समय तक भिन्न भिन्न रीति से प्रयास किया, लेकिन मैं शरीर में प्रवेश नहीं कर सकी, क्योंकि शरीर तो ठंडा हो चुका था, उसमें कोई हलचल नहीं थी, चुरपुर नहीं हुई, और कोई भी कर्मेंद्रियों ने अपना काम जो है जो पूरा कर लिया था, आँख नाक सब उसी स्थिति में थे, तो मैं तो प्रवेश ही नहीं कर सकी, और इसलिए फिर अब वापस आ गई। तो बाबा ने कहा कि बच्ची देखो, कर्मातीत स्थिति को प्राप्त हुए बिना कोई भी बच्चा जा नहीं सकता परम धाम। क्यों? क्योंकि वहाँ जो उसकी सीट है, जहाँ से परम धाम से वो आत्मा जब भी आई थी, वो हाईएस्ट स्टेज, संपूर्ण पवित्रता की स्टेज, उसकी स्थिति के अनुसार जो भी संपूर्ण पवित्रता है, तो वहाँ पर से जब आत्मा आई तो अंत में जाकर अपनी सीट पर बैठ भी तभी सकेगी जब उस स्थिति को उसने प्राप्त किया होगा, संपूर्ण स्थिति को। तो इसीलिए बच्ची अब बाबा टाइम देता है तुम्हें, जाओ नए शरीर में, नए गर्भ में, वहाँ माता के गर्भ में प्रवेश करो, नया जन्म में जो भी बचे हुए कर्म है कर्मातीत स्थिति के, वो सब संपूर्ण करके आओ। तो अभी तो देखो 60 साल से ज्यादा हो गए मामा को गए हुए, 60 ईयर से ज्यादा, फिर भी मामा लगभग अंतिम स्थिति में पुरुषार्थ कर रही है। और बाबा ने कहा सभी बच्चों को बताना कि कोई भी अपने इस शरीर से वर्तमान परिस्थितियों से संगम युग में कभी भी असंतुष्ट न हो, कंटाल न जाए, अशांत दुखी न हो, अरे इस जन्म में मेरे पास तो बीमार तन है, मैं क्या सेवा करूँगा, इस जन्म में तो मैं साधारण हूँ, धन की उतनी ज़्यादा नहीं है मेरे पास, धन भी तो धन से भी नहीं कर सकता, मन भी व्यर्थ विचारों में उलझा रहता है, तो तन मन धन और संबंधी वगैरह जो हैं, कोई परिवार में मानते हैं कोई नहीं, मतलब किसी भी तरीके से संपूर्णता की स्थिति प्राप्त करने में ऊपर से दिखता है जैसे ये सब बातें नहीं हैं सहयोगी जो होनी चाहिए। तो हर बच्चे को ये कहना कि ये ही संगम युग का जन्म है जो सबसे बहुत बहुत महान है, जो ये जन्म मिला है, तो इस जन्म के प्रति तन मन धन संबंध किसी के भी प्रति वो कोई ऐसी नेगेटिव बात ना सोचना, ना बोलना, ना करना, क्योंकि यही संपूर्णता की स्थिति को प्राप्त करना है। तो इसीलिए आप सब भी जो आए हो, तो पहला तो यही संकल्प लो कि मुझे कभी भी इस जन्म की किसी भी परिस्थिति से, किसी भी पेपर से अतृप्त नहीं होना है, अशांत नहीं होना है। वाह 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 वाह, आपने मुझे ये कितना अच्छा जन्म दिया है, और अभी भी मैं बस पुरुषार्थ कर रही हूँ इस शरीर के द्वारा, जो भी हो तन मन में कमी उसको सोचे ही नहीं, बस बाबा मुझे तो इस जन्म में ही संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है। जितना संकल्प ही ये रखेंगे उतना परिस्थितियां भी अपने आप परिवर्तित होती जाएंगी, क्योंकि ये समय चल रहा है संकल्प सिद्धि का। इसीलिए अगर संकल्प पॉजिटिव होगा तो बिल्कुल पॉजिटिव परिस्थितियां भी हो जाएंगी, सब कुछ वातावरण, हमारी वृत्ति, सब कुछ ऐसा हो जाएगा और हम संपूर्णता को प्राप्त करने की स्थिति में हो जाएंगे। इसीलिए एक तो ये संकल्प करके ही सब जाएं, जब भी जाना हो, कि मुझे हर हालत में इस शरीर में, इस जन्म में ही संपूर्णता को प्राप्त करना है, पहली बात। अब फिर से ये तो 65 की बात है जब ममा ने शरीर छोड़ा, लेकिन ब्रह्मा बाबा के साथ साथ मुझे रहने का बहुत बहुत सौभाग्य मिला है और 8-9 वर्ष तक बीच बीच में कई बार अनेक बार आए। बाबा पहले बाहर भी जाते थे तो कानपुर में भी मिलने का सौभाग्य हुआ, दिल्ली में भी 2 बार बाबा आए, दोनों बार वहाँ जाके काफी रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ बाबा को सुनने का। तो मैं अब उस संदर्भ में आज का विषय और एक्सपेंड करना चाहता हूँ कि ब्रह्मा बाबा को जब देखा और सर्व शक्तियों की बात जो है, विघ्न विनाशक होते हुए कैसे हम कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करें, तो पहली बात, बाबा हर बच्चे को, जो भी बच्चा बाबा से मिलता था उसको संपूर्णता की निगाह से देखता था। बस पहले यूं बाबा के हाथ फैल जाते थे, आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, स्वीट चिल्ड्रन, आओ। बस बाबा की आंखों में भी इतनी आकर्षण थी, इतनी अद्भुत शक्ति थी, बाबा के रोम रोम से भी पवित्रता के वाइब्रेशन झलकते थे कि बस जैसे ही बाबा बाहें फैलाते थे हम बाबा की बाहों में आ जाते थे और बस बाबा से दृष्टि लेते लेते हम सब भी अशरीरी हो जाते थे, क्योंकि बाबा ने इतना अभ्यास किया था, मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा, वो सब आपने सुना है। तो हम भी अपने में झांक कर देखें कि जब वो बाद के वर्षों में तो बाबा ऐसे फिजिकली बाहों में नहीं लेते थे, डॉक्टर ने मना किया था कि कुछ इन्फेक्शन लग सकता है, तो बाबा दूर से ही दृष्टि देते थे। तो इस कारण से मैं भी अपने को ये चेक करूं कि मैं भी बाबा की तरह, बाबा ने ब्रह्मचारी तो हमें बना दिया, सब पवित्रता का धारण, व्रत का धारण कर रहे और आगे भी करते रहने की उसकी सूक्ष्मता में जाकर पवित्र बने। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये ब्रह्मचारी के साथ साथ अब ब्रह्माचारी बनना है। ब्रह्माचारी माने ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखते हुए, जिन पर की आज हम लोग और डिस्कस करेंगे, तो वो डिस्कस करते हुए, सुनते हुए, धारण करते हुए हम भी बस संपूर्णता की ओर बढ़ते चले। आज तो बाबा से जब हम पहली बार मिले, कानपुर में बाबा आए हुए थे, हम लखनऊ यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कर रहे थे, 1962-63 की बात है। तो कानपुर में बाबा से मिलने जाना हुआ, तो बस बाबा से मिले और मैंने बताया ना, बाबा हर बच्चे को अल्टीमेट संपूर्णता की निगाह से देखता है, बाबा के सामने वर्तमान स्वरूप नहीं होता। तो बाबा ने कहा, आओ बच्चे आओ, बाबा तुम्हारा बहुत बहुत समय से इंतजार कर रहा था। तो देखो कितनी भगवान हमारा इंतजार करे, कितनी बड़ी बात है। लेकिन ये तो बाबा ही जाने और हम तो अल्पकालीन तब ज्ञान में आए हुए भी लगभग कुछ महीने या एक वर्ष हुआ था, तो हमने सोचा हम लोगों को पहुंचना तो जल्दी था 7:30 बजे, लेकिन सड़क भी थोड़ा टूटी फूटी थी, कोहरा भी था, सर्दी का मौसम था, सुबह का समय था, इसलिए लेट पहुंचे। तो हमने भी वैसे ही उत्तर दिया, हाँ बाबा आने में देरी हो गई, क्यों? क्योंकि ये स्थूल कारण थे। अच्छा, इस वजह से देर हुई, लेकिन बाबा बहुत बहुत समय का इंतजार कर रहा है।
मुक्ति धाम तुम्हें जाना है, अपने सुकर्मों के बलदार ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो,
बात हो रही थी कि बाबा किस प्रकार से हर बच्चे को उसके संपूर्ण स्वरूप में देखते थे। जैसे कहते हैं ना, हर एक का आदि और अनादि काल, और वो वही है जो संपूर्ण स्थिति है। तो इसीलिए परमधाम में तो हम सबको जाना ही है थोड़े समय के लिए, लेकिन सारे हिसाब किताब चुकतू करते हुए और सूक्ष्म वतन में सिंपली बस अष्ट रत्नों की भांति पास विद ऑनर्स होके बस सबके सामने नैन मुलाकात करते ही सीधे जाएं, कोई भी किसी भी प्रकार की सजा का कोई अनुभव न हो, आप सब विशेष आत्माएं बैठी हुई हो। तो इसीलिए सारे हिसाब किताब हम इस शरीर से चुकतू करें, जो ब्रह्मा बाबा का भी लक्ष्य रहता था। तो इस कारण से पहली बात कि हम जिस भी ब्राह्मण आत्मा को देखें, उसको संपूर्ण स्वरूप में देखें। वर्तमान स्वरूप में अगर देखते हैं तो उसकी कमी कमजोरी, उसके पुरुषार्थ, कोई ऐसी बातें, अभी संपूर्ण तो कोई बना नहीं, वो उन पर दृष्टि ज्यादा जाती है। और जब उन पर दृष्टि जाती है तो वो हमारे अंदर न चाहते भी अवगुण अंदर प्रवेश करता जाता है, कमजोरी होती जाती है। तो पहली बात जो बाबा करते थे कि हर बच्चे को संपूर्ण स्थिति में, और हम आज से यही लक्ष्य रखें कि किसी को भी हमें वर्तमान स्वरूप में न देख करके उसकी संपूर्ण स्थिति में देखना है। दूसरी बात, बाबा इस बात को और भुलाने के लिए ना कि वर्तमान में जो भी किया है वो याद आता रहेगा, पुरानी बात, कोई ऐसी बात जो प्रिय न हो, तो बाबा पूछता था पहले मिलन में साकार में, हाँ बच्चे, स्वाभाविक रीति से क्या नाम है, कब आए, पहले मिले हो, आदि आदि। तो बाबा ने पूछा क्या नाम है, हमारा लौकिक में नाम ऐसे श्री है, जैसे श्री जो लगता है, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राधे, श्री कृष्ण आदि, तो हमने बताया बाबा ये नाम है। तो बाबा ने कहा अच्छा श्री, बड़ा जॉली स्वभाव के भी बाबा थे। सबसे बड़ी विशेषता तो ये थी, जो बच्चा जैसा होता था बिल्कुल उस समान ही बाबा का व्यवहार होता था, यंग लोगों के साथ यंग रीति से, जो वृद्ध होते थे उनके साथ वृद्ध उस रीति से, बच्चों के साथ बच्चों की रीति से। मैं तो उस समय पूरा लगभग यंग था, 16-17 साल की मेरी उम्र थी। तो बाबा से जब मिले और तो बाबा ने जब पूछा तो बताया श्री, तो बाबा ने कहा अच्छा, बाबा के साथ तो कई दादियां दीदी आते हैं, आओ आओ, वो कानपुर में पहली बार मिला था, तो आओ बच्ची, आओ गंगे बच्ची, आओ। सब जो जो दादियां थी, बड़े थे, भाई बहन, देखो तो आओ, आज बाबा को एक बच्चा मिला है जो क्या बाबा से भी महान है, ऐसा हो सकता है? हा? कितना हमने तो सोचा कि जैसे लौकिक में बोलते हैं ना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, तो बाबा मतलब लौकिक दुनिया की तरह खिंचाई कर रहा है, जैसे कोई हो सकता है बाबा से ऊंचा। लेकिन बाबा की हर बात में एक रहस्य था। जब हमने अपना नाम बताया श्री, तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, अभी श्री तो बाबा भी अपने नाम के आगे नहीं लगा सकता, क्योंकि श्री सिर्फ देवी देवताओं ही लगा सकते हैं जिनकी आत्मा भी पवित्र और शरीर जो 5 तत्वों से बना है वो भी पवित्र हो। तो अभी तो न किसी की आत्मा पवित्र है न किसी का शरीर, ब्रह्मा बाबा की भी अभी आत्मा पवित्र बनने का और पुरुषार्थ कर रही है, और प्रकृति के 5 तत्वों से बना ये शरीर, ये तो विकार की देन है, विकारों की उत्पत्ति है। तो इस रीति से बस बाबा आज से तुम्हारा नाम चेंज करता है, श्री जैसा तुम्हें बनना है, और बाबा फिर तुम्हें नाम मोहन देता है। तो देखो कितनी खुशी होती है कि भगवान ने नाम दिया। बाबा के हरेक में ये लक्ष्य होता था कि वर्तमान बात बच्चे भूल जाएं, जो भी वर्तमान जन्म है, क्योंकि उसमें तो कई विकारों का, कई जन्मों की बात, कई वर्षों की बात याद रहती है, खुशी सदा कायम नहीं रहती है। इसलिए बाबा ने कहा अब तुम्हें श्री जैसा बनना, यानी कि आत्मा को भी अपनी पवित्र बनाना है, और 5 तत्वों से बना ये शरीर, इसको भी पवित्र बनाना है, तब श्री नाम के अधिकारी बनेंगे। तो आप सबका भी वास्तव में नाम चेंज किया है बाबा ने, भले साकार में मिले नहीं मिले, लेकिन सभी को क्या बना दिया बाबा ने, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, यानी होवनहार राजकुमार और राजकुमारी। यहाँ ब्रह्मा कुमार बने तो वहाँ पर राजकुमार राजकुमारी बनेंगे ही। तो इस कारण से बाबा वर्तमान समय की बातें सब मस्तिष्क से निकाल देना चाहता है और बाबा इस प्रकार से हमें संपूर्ण बना रहा है। फिर ये जब बाबा करता है तो हरेक अपने को यही समझे मुझे बाबा ने जो नाम दिया है, इसीलिए बाबा कहता है ब्रह्मा कुमार तो बन गए, ब्रह्मचारी बन गए, अब ब्रह्माचारी, ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम। तो एक दूसरा ब्रह्मा बाबा को जब देखा नहीं तो कैसे कदम पर कदम चल सकेंगे। तो वो कुछ बातें मैं विशेष करके बताना चाहता हूँ कि कैसे बाबा संपूर्ण स्थिति की तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे। पहली बार मैं जब 62 वगैरह में मिला और उसके बाद 69 में साकार बाबा को, इसके बीच में कई बार मिले, तो बाबा को देखा हमने कि बाबा की स्थिति, पहले तो जब मिलते थे आओ बच्चे चलो बैडमिंटन खेलते हैं, चलो घूमने चलते हैं, बाबा पत्र भी लिखता था झोपड़ी वगैरह में तो वहाँ बैठाता था, देखो बच्चे इस रीति से सर्व आत्माओं का कल्याण कर सकते हैं, हर आत्मा तक पहुंचा तो नहीं जा सकता। तो बहुत बातें ऐसी होती थीं जो ब्रह्मा बाबा के जीवन से जानने को मिलती थी। ये देखा बाबा को कि पहले बाबा आते थे मतलब मिलते थे, हाँ बच्चे कुछ पूछना है, हम लोग जो भी बात मन में होती थी वो बाबा को बता देते थे, बाबा ये पूछने आए हैं, बाबा उसका समाधान कर देते थे। लेकिन जितना जितना 62 के बाद, हर साल में 3-4 बार तो मिलना हो ही जाता था, 64, 65, 6 आदि आदि, जब 69 की तरफ बढ़ रहे थे, देखा बाबा के सामने जाते हैं, बाबा को ये बात कहेंगे, बाबा पूछते भी हैं कुछ पूछने आए हो बच्चे, सब कुछ भूल जाता था, कोई भी बात ही याद नहीं होते थे, बस बाबा को देखते रहते थे, बाबा के नैनों से वो निकलती शक्ति को भी आवाहन उसका करते रहते थे। तो क्या होती है, जितनी जितनी पवित्रता की धारणा हमारे अंदर होती जाती है उतना उतना हमारे नैनों में, हमारे वाइब्रेशन में वो शक्ति बढ़ती जाती है। तो लेकिन ये करते करते जब 68 के बाद 69 में मिले, समय के अभाव में मैं कुछ बातों पर विशेष बल देना चाहूँगा कि 69 में 17 और 18 जनवरी को जब बाबा से मिले, आज शक्तियों की बात हो रही है ना, तो बस बाबा से दृष्टि ली, अब बाबा कहता था बच्चे ये पूछने आए हो, पहले हमेशा हम बताते थे ये पूछने आए हैं, लेकिन अंतिम 2 दिनों में हम लगभग 5-6 बार बाबा से मिले, कोई और पार्टी तो ज़्यादा थी नहीं, इसलिए बार बार बाबा से मिलना होता था, बातें करने मिल जाती थी, बैठना होता था, तो बस बाबा कहते थे बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा। तो बाबा ने मुरलियों में भी कहा है, अभी भी जो वर्तमान समय मुरलियाँ चल रही हैं उसी श्रृंखला में कई मुरलियाँ ऐसी हैं, बाबा ने कहा बच्चे जब अंतिम अवस्था कर्मातीत अवस्था संपूर्ण स्थिति हो जाएगी ना, तो हम किसी के भी मन के विचारों को पढ़ सकते हैं, और जब मन के विचारों को जान लिया तो उसका समाधान भी कर सकते हैं जो भी प्रश्न लेके आया है। तो एक तो होती है बोलने का, बोल करके कहा, लेकिन एक होती है हम उसके मन तक पहुंच के उसकी बात को जान ले। ये बात अंतिम 2 दिनों में हमने कई बार अनुभव करी ही, और बस बाबा यही बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा। और ये कब स्थिति आती है, ये स्थिति तब आती है जब हमारे मन का व्यर्थ सब खत्म हो जाता है। हमारे मन में ही विचारों में अगर व्यर्थ या कोई विकारी या कोई भी व्यर्थता किसी भी प्रकार की रही तो हम किसी के संकल्पों को पढ़ के उसका समाधान नहीं कर सकेंगे। और अभी वो ही समय आ रहा है जब बहुत लोग आएंगे, चारों तरफ से भागेंगे कि यहाँ बहुत शांति मिलती है। उस समय आएंगे तो हम बस हम उनके नैनों में देख करके मन के विचारों को पढ़ करके उसको बात को समाधान तुरंत कर देंगे। ये तभी होगा जब व्यर्थ निकल चुका होगा। तो बाबा का व्यर्थ तो लगभग समाप्त हो चुका था और उस समय अंतिम दो दिन में जो भी रिमेनिंग कार्य बाबा के बचे हुए थे वो बाबा ने पूरे किए। और व्यर्थ कैसे जाएगा? हाँ, क्योंकि अंदर हमारी समर्थता की संपूर्ण मूर्ति है, हमारे अंदर ही है, बस अंतर नेत्रों से हम उसका रोज रोज दर्शन करें, आह्वान करें। जैसे ब्रह्मा बाबा ऊपर संदेशी भी वतन में जाती थी कई बार, तो संदेशी को कहते थे कि जाओ देखना कि बाबा संपूर्ण ब्रह्मा, बाबा सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा और इस ब्रह्मा में क्या अंतर है। संदेशी आती थी, बताती थी, बाबा वैसे तो सब कुछ वही है लेकिन उस ब्रह्मा में तेज बहुत है, लाइट बहुत है, पूरा ऑरा उसका चमकता है। तो बस बाबा को यही धुन लगी रहती थी, बस मुझे अब अपने संपूर्ण स्वरूप की तरह बनना है, हमें भी बस अभी वो धुन लगी रहनी चाहिए। कैसे लगेगी? हमारे पास तो वो कोई फैसिलिटी नहीं कि संदेशी जाए और संदेशी, हमारे अंदर ही जो संपूर्णता की मूर्ति है, अंदर जाने का अभ्यास। और सुना होगा एक मूर्तिकार था, बड़े अच्छी मूर्ति बनाता था पत्थरों को काट के, तो सब कहते थे आप इतनी अच्छी मूर्ति कैसे बनाते हो, बहुत एक्यूरेट, बहुत अच्छी। वो कहता था नहीं, मैं मूर्ति तो नहीं बनाता, जो होती है पत्थर का उसके चारों तरफ जितना भी व्यर्थ है उसको काट काट करके निकाल देता हूँ। तो व्यर्थ जब निकल जाता है तो अंदर से समर्थ संपूर्ण मूर्ति प्रत्यक्ष हो जाती है। बस हमें भी यही अभ्यास करना है। कैसे करेंगे अंदर की यात्रा? एक व्यक्ति था, थोड़ा अशांत हो रहा था, तो उस अशांत स्थिति में उसने सोचा चलो गुरुजी के पास चल के थोड़ा वहाँ पर बैठते हैं, शांति का मैं अनुभव करके आऊँ। गया, 10-20 और भी चेले बैठे हुए थे, सत्संग कर रहे थे, गुरुजी सत्संग करा रहे थे, बस सब तन्मय होकर सुन रहे थे। इतनी देर में भूकंप आया, धरती हिली, भूचाल आया। सुना होगा आपने, भूचाल आया, सब लोग बाहर भागे, स्वाभाविक है, बाहर चारों तरफ अति हलचल हो, लेकिन ब्यूटी यही है अंतिम पेपर हमारे की, कि अंत में चारों तरफ हर चीज की हलचल होगी, प्रकृति की भी हलचल होगी, युद्ध का भी होगा, सिविल वार होगा, खाने पीने की चीजों का अभाव होगा, आदि आदि बहुत हलचल होगी, लेकिन उसका आंसर है अति हलचल में अति अचल। बस उस स्थिति में हम जितने अचल रह सकेंगे, और उसके लिए क्या करना है कहना तो बड़ा आसान है। जब भूचाल आया, सारे लोग भागे, गुरुजी आओ आओ, आप भी बाहर आओ, कभी भी ये छपरा गिर सकता है जिसके नीचे बैठ के हम सब लोग सत्संग कर रहे थे, तो गुरुजी नहीं हटे, वहीं बैठे रहे। थोड़ी देर बाद जब भूचाल शांत हो गया, सब लोग आए और सबने आके कहा गुरुजी आपको भय नहीं लगा? तो गुरुजी ने कहा कि चुप बैठे रहे, आपको बाहर आना चाहिए था, हम लोग कह रहे थे आओ आओ आओ। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने बोला रे तुमने देखा नहीं, तुम सब भी भागे थे, मैं भी तो तुम्हारे साथ भागा था। कहाँ गुरुजी, आप तो यहाँ के यहीं बैठे हुए थे, आप तो देखा, सबने एक दूसरे से पूछा कि नहीं गुरुजी तो यहीं बैठे थे, नहीं तुमने देखा नहीं, तुमने स्थूल देखा, तुम सब भी भागे, मैं भी तुम्हारे साथ भागा, बस अंतर क्या था, तुम बाहर भागे, मैं अंदर भागा, अंदर की तरफ, बस ये स्थिति का एक हमारा अंतिम शक्तियों के रूप में अभ्यास होना चाहिए। बाबा इसीलिए कराता है, बाबा का यही देखते थे, ब्रह्मा बाबा का, बाबा से गए बात कर रहे हैं, अभी अभी बाबा बड़े प्रेम से बात कर रहे हैं, दूसरे सेकंड ही बस बाबा जैसे है एकदम गुम हो जाते थे, एक सेकंड में यहाँ इस शरीर में, एक सेकंड में शरीर से पार अपने वतन, सूक्ष्म वतन, परम धाम, सतयुग, जहां भी आत्मा को जाना हो। तो ये अभ्यास जो बाबा कराता है, पांच जगह का अभ्यास भी, ये हमारे अंडर कंट्रोल होना चाहिए कि मन की स्थिति को हम जहां भी ले जाना चाहें, जितना समय ले जाना चाहें, जिस समय ले जाना चाहें, जिस परिस्थिति में हो, तो बस हमारा ये अभ्यास जितना होगा अंत में विजय हमारी भी उतनी ही होगी। और क्या देखा बाबा में, साथ साथ एक ये भी कहते हैं भारतीय संस्कृति में, जैसे कहते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा ही हमारा परिवार है, तो लोग समझते हैं मनुष्य जितने हैं हिंदू मुस्लिम चीनी और जितने भी वो सब भाई भाई हैं, भाई बहन हैं, लेकिन नहीं, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा पे मनुष्य ही नहीं रहते, पशु पक्षी जीव जंतु प्रकृति वनस्पति सभी कुछ है। तो सबसे पहला जैसे बच्चा होता है ना, जब पैदा होता है तो माँ की छाती से ही लगा रहता है, माँ ही उसका संसार है, वहीं से ही उसकी पालना होती है। तो ऐसे ही हमारे परिवार के वसुधैव कुटुंबकम के सबसे छोटे बच्चे कौन है, ये पेड़ पौधे जो धरती माता के साथ जीवन पर्यंत लगे रहते हैं, बस वहीं से ही उनकी पालना होती है, वहीं से ही हम सब को जो भी है, अनाज है, फल फूल जो भी कुछ है, सब धरती से ही प्राप्त होता है। इसीलिए वो हमारे परिवार के वसुधैव कुटुंबकम के सबसे छोटे बच्चे हैं जो जीवन पर्यंत, और सबसे छोटे के प्रति तो कितना प्यार होता है। तो इसीलिए आगे से वनस्पति पेड़ पौधे जितने हैं इनके प्रति बहुत हमारी दृष्टि हो, ये हमारी आज्ञा का पालन करने के लिए उत्सुक हैं, बहुत पेड़ पौधे, और बहुत इस पर एक्सपेरिमेंट हुए हैं, जगदीश चंद्र बोस ने भी बहुत करा है, अगर प्यार से पालना होती है तो इनका आउटपुट ज्यादा रहता है, फल फूल वगैरह मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता। दूसरा जब सेकंड और कौन होता है, पहला बच्चा, ये जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो चलना सीखता है, तो दो हाथ और दो घुटने पैर के बल वो चलता है, तो ये चार उससे चलता है। तो सबसे पहले तो वो रेंगना सीखता है, पेट के बल थोड़ा हिलता है, रेंगता है, और फिर इस तरह आगे। तो दूसरे प्रजाति जैसे है ये, जितने ऐसे जानवर जो केंचुए हैं, सांप है, जो पूरे के पूरे शरीर के साथ ही एकदम चलते हैं। जब और बच्चा बड़ा होता है, थोड़ा दो घुटने के बल दो हाथ के बल चलता है चौपाए, तो जितने भी चार चौपाए हैं, चार पैर वाले हैं, वो सब हमारे परिवार के थर्ड एल्डर सदस्य हैं। सबसे छोटा सदस्य वनस्पति पेड़ पौधे, फिर दूसरे ये सांप और केंचुए जो पूरा रेंगते हैं, तीसरे जो चौपाए जानवर गाय भैंस और कुत्ते बिल्ली जितने भी चार पैर वाले हैं वो, और फिर जब बच्चा एकदम बड़ा हो जाता है और थोड़ा, तो फिर दो पैर से चलता है, और हम सभी जैसे चलते हैं, तो हम सब वसुधैव कुटुंबकम के एल्डेस्ट सदस्य हैं, बड़े से बड़े। तो इसीलिए हमें अपने परिवार के इन छोटे सदस्यों को, जितने पेड़ पौधे हैं, वनस्पति हैं, जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, जीव जंतु, ये सब हमारे वसुधैव कुटुंबकम, सतयुग में ये भावना होगी मर्ज्ड रूप में, सब चीजों से प्यार होगा, अति प्यार होगा, लेकिन संस्कार तो यही भरना होगा ना। तो इस कारण से इनको इस दृष्टि से देखें। और साथ में क्या, कौन सी शक्ति, एक भारतीय संस्कृति बोलती है जियो और जीने दो, बस किसी पर हम अधिपत्य न जमाए। मैं बड़ा हूँ, ये छोटा है, मैं अमीर हूँ, ये गरीब है, मैं शक्तिशाली हूँ, ये कमजोर है, इस पर नहीं, जियो और जीने दो। ये सिद्धांत इसी पर ही लागू है कि हम सब कितना आपस में प्रेम से रहते हैं, जितना हमारा प्रेम होगा एक दूसरे के प्रति, उसी तरह बाबा भी हमें उसी श्रेणी में ले जाना चाहता है। पहले बाबा कहता था लव एंड लॉ का बैलेंस, अभी बाबा कहता है लव इज लॉ, लव जो है, प्रेम जो है, वो ही लॉ है, प्रेम से सबके साथ चलो। भक्ति में भी कबीर दास ने भी कहा है, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। बस इतना प्रेम हो, क्योंकि अंतिम समय जब प्राण तन से निकलते हैं तो हरेक धर्मशास्त्र में लिखा है, भारतीय संस्कृति भी बोलती है, अंतिम समय याद वो ही आता है जिससे या तो बहुत स्नेह हो, प्यार हो, बच्चा पोता पोती धन दौलत जिनसे बहुत अति स्नेह, वो जीवन पर्यंत जिनके बीच में रहते हैं उन्हीं से प्यार बहुत हो जाता है, या फिर जिससे जीवन में अति कटुता हो, बस दुश्मनी का भाव हो, वो याद आता है। तो इसीलिए बस ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ना किसी भी आत्मा से, जितने भी ब्राह्मण परिवार, यही तो हमारा परिवार है, इनसे ना तो अति स्नेह हो, किसी से बहुत स्नेह की दिल की बात बताए बिना चैन ना पड़े, बस कोई भी बात पता चली फलाना फलानी आए मित्र, उससे मैं दिल की बात करूं, कि ना किसी से दोस्ती और ना बैर, ना दुश्मनी की भाव। अभी होता ब्राह्मण परिवार में कई बार क्या है कि हमारा परिवार यही है और संस्कारों की भिन्नता तो है ही है हर एक में, एक न मिले दूसरे से, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी के साथ हमारा अति स्नेह होता है, किसी से कटुता होती है। लेकिन इसमें यही होगा अंत समय, शरीर तो छोड़ना ही है, प्राण जब निकलेंगे, आत्मा जाएगी, इनमें से कोई भी याद आ गया तो जो बाबा ने कहा अंतमति सोगति, बस कोई भी देहधारी वस्तु वैभव, कोई भी चीज याद आई, वस्तु आई कोई भी, उसके अनुसार ही हमारा जन्म हो जाएगा, कोई भी याद नहीं। तो ये शक्ति की अभी विशेष आवश्यकता है, हर आत्मा के प्रति देखें, उनसे व्यवहार करें, जो भी व्यवहार है सात्विक, लेकिन किसी के प्रति ना अति मोह हो, प्यार हो, ना किसी से वैराग दुश्मनी की भावना, ये शक्ति, ये चेक करते चले अंत में। और हमने क्या देखा बाबा में, बाबा में बस कोई जो काम अंत समय रह जाते हैं, जो हम चाहते हैं करना और कर नहीं पाए अपने जीते जी, वो याद आता है। तो अक्सर करके जब यहाँ पर कोई शरीर छोड़ता है, आत्माएं आती हैं, किसी का भोग लगाते हैं, तो कई बार वो आत्मा कहती है बाबा मेरी तो ये इच्छा थी बच्ची को समर्पण कर दूं, मकान बना के यज्ञ को दे दूं, कोई भी बात होती है मैं नहीं कर सका, टालता रहा कल कर लेंगे कल कर लेंगे बाबा। तो बाबा क्या कहता है, वो कई पूछते हैं बाबा मैं फलाने को नॉमिनेट कर दिया है, उसको वो मेरे पीछे कर दे, फलाने को उत्तराधिकारी बना दिया, तो बाबा कहता है जिसको बनाया और वो करेगा, भले धन तुम्हारा है चाहे, लेकिन भाग्य है उसका बनेगा, क्योंकि उसने दिया। अगर तुम अपने हाथों से जीते जी करके जाते है तो तुम्हारा उस सदा का भाग्य बनता। तो अभी ये रहने की आवश्यकता है कि बस मैं जो अंत मते सोगते के अनुसार जो भी बात आए तुरंत दान महापुण्य कहते हैं ना, वो हमारी स्थिति होती चले। तो बाबा के भी वास्तव में अंतिम दिन तीन चार काम पेंडिंग रह गए थे। पहली बात, बाबा तब तो कोई और ईमेल वगैरह नहीं था, पत्र लिखते थे सब, तो बाबा को पत्रों के उत्तर देने पड़ते थे, और बहुत पूरे भारत और विदेश से भी पत्र आते थे, तो कई बार दो तीन दिन के बहुत इकट्ठा बोरी भर के पत्र के उत्तर इकट्ठे। तो बाबा ने लास्ट डे, क्योंकि ब्यूटी यही है कि जब हमारा आत्मा जाए हम आवाहन करें, हमें पता चला है बाबा बस अब मैं आपके पास आ रही हूँ या आ रहा, हमें पहले से अपनी मृत्यु का आभास भी हो जाए, जिससे कि हमारा कोई भी काम पेंडिंग न रहे। पेंडिंग काम रहेगा तो वही ही बचा हुआ काम रहेगा, तो वो ही अंत समय याद आता रहेगा, और उसकी याद में शरीर छोड़ा तो उस अनुसार ही फिर हमारा पुनर्जन्म यहाँ पर ही लेना पड़ेगा। तो इसीलिए कोई भी शुभ कार्य जो है अगर सोचा हुआ है उसको पेंडिंग में न रखे, पूरा कर ले। और साथ में बाबा का एक काम ये था अंतिम दिन का, पत्र के उत्तर बाबा ने जल्दी जल्दी ईशू दादी के साथ बैठ के लिखवाए और पत्र कंप्लीट कर लिया। दूसरा एक ये नक्की लेक के पास जो म्यूजियम है वो बिल्डिंग में हम लोगों ने प्रदर्शनी करी थी, तो सबका ये संकल्प था बाबा वो बिल्डिंग ले लेनी चाहिए, अच्छा है जब लोग सूर्यास्त के बाद आते हैं उधर से दर्शन करेंगे तो यहाँ हम अपनी प्रदर्शनी परमानेंट लगाते हैं। लेकिन उस समय हमारे पास साधन इतने संपन्न नहीं थे, साधनों का अभाव था, तो कई दिनों से वो बात चल रही थी लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। तो अंतिम दिन बाबा ने उस फाइल पर भी साइन कर दिए कि इसको ले लिया जाए। और क्या बात थी, हाँ बाबा का कर्म भोग तो सबका होता है, तो शरीर के कर्म भोग आज भी मुरली में आया है ना, कर्मातीत अवस्था की निशानी यह है कर्म भोग के ऊपर योग बल विजय प्राप्त कर ले। तो बाबा ने अपने लिए क्या युक्ति रची हुई थी कि जब कभी कभी बाबा को खांसी नॉर्मल केस में आए तो कोई बात नहीं, लेकिन मुरली चलाते चलाते खांसी आती थी तो संदली के पास ही श्री कृष्ण का लक्ष्मी नारायण का चित्र होता था। अब बाबा कहता था देखो बच्चे अभी ये कलयुग अंत में आत्मा भी तमो प्रधान है, शरीर के तत्व भी तमो प्रधान है, ये खांसी आ रही है कितनी डिफिकल्टी होती है, और लेकिन कल बाबा जाके ऐसा मिशन कृष्ण बनेगा। बस बच्चों को खुशी में क्या करना चाहिए, खग्गियां मारनी चाहिए बाबा ऐसा करके है। बस कहां खांसी एक तरफ आ रही है तकलीफ दे रही है, आंखें भी गीली हो गई, कहां दूसरी तरफ बाबा ने अपनी विचारधारा को इतना शक्तिशाली और कंट्रोल में कर लिया था, तुरंत उसको मोल्ड करके कल मैं जाके ऐसा मिशनु कृष्ण बनूंगा, सब सतो प्रधान होगा, कोई खांसी नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई रोग नहीं, और तुरंत ही उसके ऊपर विजय प्राप्त करके फिर बाबा मुरली चलाने लगते थे। तो हाँ हाँ क्यों नहीं, हमें भी जो जो परिस्थितियां आती हैं उनके लिए हमें भी खुद उनके प्रति जैसे समाधान सदैव बुद्धि में रहे, जिससे कभी भी वो परिस्थितियां हमारे ऊपर हावी ना हो, हम आत्मा हमारी स्वस्थिति इतनी मजबूत हो जाए कोई भी परिस्थिति वार ना कर सके। और उसके बाद क्या, बाबा ने उस दिन सुबह मुरली नहीं चलाई थी, अमृत वेले बाबा आए थे, सब बच्चों को दृष्टि दी और हम सोचते थे अब दृष्टि के बाद बाबा मुरली चलाएंगे, लेकिन पूरे पौना एक घंटे तक कोई मुरली नहीं चलाई 18 जनवरी की सुबह। और बाबा बस अच्छा बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग कह के चले गए। लेकिन बाबा को बुद्धि में था आज बच्चों को ज्ञान स्नान नहीं कराया है मुरली नहीं, तो बाबा ने रात्रि क्लास के लिए सबको पहले ही आवाहन करा। रोज रात को 9:15 क्लास होती थी, उस दिन बाबा ने कहा आज बच्चे 7 बजे भोजन करके 7:30 बजे तक क्लास में आ जाए। तो बाबा ने ये भी दिशा, ये कब दिशा निर्देश हो सकता है भोजन करके, क्यों? क्योंकि अगर कोई शरीर छोड़ देता है उसके बाद तो घर में अगर भोजन रखा भी हो पका हुआ तो भी स्वीकार नहीं किया जाता। तो इसी तरह बाबा को जैसे पूरा संकल्प सिद्धि का स्वरूप का वो अनुभव हो रहा था, इसीलिए पेंडिंग काम जितने थे बचे हुए काम और ये मुरली सुनाने का, ये भी अंत में बाबा ने पूरा किया। बाबा क्लास में आए और उस दिन बाबा को न तो एक बार भी कोई खांसी आई, न गला साफ करने की जरूरत पड़ी, कुछ भी नहीं, बिल्कुल उसी खुशी में नशे में बच्चे बस। और बाबा मुरली चलाते रहे, जो इस बात का प्रतीक है जो आज मुरली में बोला बाबा ने, जब योग बल से कर्म भोग पर, तो ये कर्म भोग खांसी शरीर में तकलीफ, जनवरी का महीना कितनी सर्दी होती थी, लेकिन ऐसे में भी बाबा ने ऐसा मुरली, आप 18 जनवरी की मुरली सुनो, मेरे तो यहाँ छपी हुई है, क्यों? क्योंकि मैं तो सम्मुख सामने बैठा हुआ था 18 जनवरी को, थोड़े ही बच्चे थे सम्मुख मुरली सुन रहे थे, तभी हमने एक चमत्कार का अनुभव किया। क्या चमत्कार? बस मैं हमारे मन में संकल्प आया, वाह बाबा के सम्मुख मुरली सुन रहे हैं, बहुत बार सुनी थी, बाबा कुछ बोले हमारे लिए, क्योंकि बहुत दूर हम इंजीनियरिंग पास करने के बाद आसाम में पोस्टेड थे और वहां से भी बाबा ने युक्ति से हमें बुला लिया। भेजते समय बाबा ने कहा था बच्चे जाओ, समय पर बाबा तुम्हें बुला लेगा। देखो 17-18 जनवरी को, इससे अच्छा समय और कौन सा हो सकता है। अंतिम स्थिति, जो पास वाले थे वो भी दूर चले गए, पार्टियां सब चली गईं और बाबा ने इतनी दूर से हमें अपने पास बुला लिया, आदेश भी दिया बच्चे जल्दी आओ, जल्दी से जल्दी आओ, जनवरी की बात। तो सम्मुख मुरली सुन रहे थे तो हमारे मन में आया कि बाबा कुछ बोले। बस भक्ति मार्ग में तो यही था, भक्त इच्छा करते हैं और जो उनके इष्ट देव होते हैं वो उनकी इच्छा को पूरी करते हैं। भक्ति मार्ग के हम द्वापर से हम ही भक्त होंगे, इतने भक्तियां की हैं। लेकिन उस दिन जब जैसे ये संकल्प आया, तुरंत ही बाबा तक कर्मातीत अवस्था बाबा की, कोई व्यर्थ नहीं, सारे समर्थ संकल्प, क्लीन एंड क्लियर बुद्धि बाबा की, तो बाबा तक संकल्प पहुंचा होगा और बाबा ने तुरंत ही नाम लेके, बस आज भी वो महावाक्य है 18 जनवरी की रात्रि क्लास की मुरली में, उस विषय पर बाबा की मुरली चल रही थी, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। कभी किसी की आपस में निंदा नहीं करनी चाहिए। और बाबा ने तभी रेफरेंस में नाम ले दिया, देखो ये बच्चा मोहन है सामने बैठा है और कभी किसी की निंदा नहीं करेगा, बहुत मीठा बच्चा है। और ये हम अपने अंदर झांका, पहले से ही बचपन से ही हमारा एक संस्कार है, कोई हमारे सामने आके किसी की निंदा करता है अगर, तो हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आज हमारे सामने दूसरे की निंदा कर रहा है, कल दूसरे के सामने जाके हमारी निंदा करेगा, वो संस्कार होता है। तो बाबा के मुख से ये सुनकर वो संस्कार और भी सशक्त हो गया और बाबा ने यह भी वरदान दे दिया कि बच्चा संपूर्ण बन जाएगा। वाह। इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। मुरली के अंदर छपा हुआ है, लिखा हुआ है, और इस रीति से अंतिम मुरली हमने सुनी बाबा की। बाबा को एक बार भी खांसी नहीं आई, कर्म भोग के ऊपर योग बल ने विजय प्राप्त कर ली थी। उसके बाद बाबा सब बच्चों से हाथ मिला के और दरवाजे की तरफ बढ़े, और बाबा का भी देखो क्या रुख था। जैसे हम जाते हैं तो मुंह उधर होता है और उधर चलते हैं, लेकिन हिस्ट्री हॉल में बाबा बस खड़े होके देख रहे थे बच्चों को, और पीछे की तरफ एक एक कदम लेते हुए बाबा कई बार ऐसा करते थे कि मैं बच्चों को पीठ कैसे दिखाऊं, बच्चे तो मेरे ये डबल सरताज हैं, मैं तो राजभाग नहीं करता, मैं तो सिंगल बस परम धाम में बैठा रहता हूं, और बच्चे इतने महान हैं, मैं उन्हें पीठ नहीं दिखा सकता। देखो कितनी महानता की बात है बाबा की हम बच्चों के लिए। तो हमारा भी दृष्टिकोण, पीठ दिखाने का मतलब ये होना चाहिए किसी के प्रति भी निगेटिविटी ना हो, नकारात्मकता ना हो। दरवाजे पर बाबा गए और दरवाजे पर हाथ हिला के अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। कभी भी बाबा ने ये अक्षर नहीं बोले, उसी रात को बोले, और उस रात को ये बोल के बाबा फिर धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ चले। दादी प्रकाशमणि भी थी, जीवी थी, साथ में गए। बाबा ने एक दिन पहले ही बोला था कि यहाँ जब बच्चे आते हैं, ये बेहद का घर है, यहाँ बेहद में टहलना चाहिए। हॉल उस समय तो हिस्ट्री हॉल ही था, बस इसकी छत पर भी जाओ टहलो। तो जल्दी पूरा हो गया था, सब भोजन कर लिया था और बाबा की क्लास भी रात्रि क्लास हो गई थी, तो हम छत पर टहल रहे थे जो बाबा ने कहा था रात्रि को। तो इतनी देर में देखा हमारे जमुना प्रसाद भाई, अभी भी वो हैं माउंट आबू में रहते हैं, वो साइकिल पर बड़ी तेजी से निकल रहे थे। तो हमने ऊपर से ही पूछा आप कहाँ जा रहे हो इस समय, तो उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर को बुलाने जा रहा हूँ, दादी जी ने कहा है बाबा की तबीयत थोड़ी नरम है, ठीक नहीं। तो वो उधर गए तो हम भी ऊपर से उतर के आए और बाबा के कमरे में की तरफ गए। तो जो वर्तमान में बाबा का कमरा है, उस समय कमरा तो यही था लेकिन थोड़ा छोटा था, जहाँ तक पलंग बाबा का पड़ा है, और इसका एंट्री पीछे से ही थी, सामने से कोई एंट्री नहीं थी, बस पीछे से। तो उधर से हम गए, हमने देखा कि बस दादी तो खड़ी हैं, बाबा भी सामने हैं बैठे हुए, और बस बाबा जैसे नैनों से दृष्टि देके बाबा पूरा शक्ति भर रहा है दादी हमें। तो हम भी नैनों के द्वारा अपने ये भारतीय संस्कृति में कहा है, तो इनके द्वारा पैर के टो के द्वारा शरीर के द्वारा ये शक्ति का सूक्ष्म रीति से संचार अन्य आत्माओं में कर सकते हैं। यही मनसा सेवा है जो बाबा कहता है, जिस आत्मा को भी देखो, और कई बार देखने की नहीं होती है, हजारों माइल दूर विदेश में कोई बाबा का बच्चा बैठा है, सब कुछ ठीक नहीं है उसकी तबीयत, तो बाबा खुद उठ के बैठ के उसका उसको शक्ति देते थे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, और इसी संदर्भ में बाबा ने 3 शब्द बोले थे जो बाबा हमेशा बोलता है, मालूम है ना, निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी। तो निराकारी वो मनसा में निराकारी स्थिति, उस स्थिति में स्थित होके जब हम दान करेंगे। प्रैक्टिकल में हमने देखा विश्व किशोर दादा बंबई गए हुए थे, उनका कुछ ऑपरेशन वगैरह था, वहां से रमेश भाई का न्यूज आती थी, बाबा दादा को बहुत तकलीफ हुई, रात को नींद नहीं आई, तो बाबा यहाँ पर योग में बैठ जाते थे और योग का दान देते थे। वहां से अगले दिन फिर फोन आता था, बाबा बहुत शांति से दादा विश्व किशोर जी सोए, और फिर बाबा अपने काम में लग जाते थे। अगर योगदान नहीं कर पाते थे तो फिर उनको तकलीफ। हमारा योग वास्तव में अगर सच्चे दिल से करते हैं वो उन आत्माओं तक पहुंचता है, उनको शांति और शक्ति का एहसास होता है। ये प्रैक्टिकल हमने देखा बाबा एकांत में बैठ के। तो हम भी अपना एक अपॉइंटेड टाइम कर लें। आज भी बाबा ने कहा है ना, हम साधारण बच्चे नहीं है, हमारी पूरी दिनचर्या फिक्स होनी चाहिए। तो पूरी दिनचर्या तो हर एक अपने अपने अनुसार होती है, लेकिन एक दिनचर्या जरूर फिक्स कर लें। जैसे अमृत वेले का समय बाबा ने दिया है शाम का योग का, एक कोई भी 10 मिनट का समय हम अपने लिए रखें, बस जो कि एज पर अवर कन्वीनियंस, जैसा हमें अनुकूल हो। और वो समय होता है क्योंकि बाबा ने कहा है अभी आवश्यकता है बच्चों की क्लीन और क्लियर बुद्धि होने की। बाबा के पास हर बच्चे का टीवी सेट है, सुना है, सब बच्चों का टीवी सेट है, नॉर्मली ऑफ रहता है, लेकिन जब कोई बच्चा किसी परिस्थिति से पार हो रहा होता है, माया के वश में होता है, कोई कमजोर चीज की उसके अंदर कमजोरी आ रही है, विकार कोई आक्रमण कर रहे हैं, तो बाबा उसे सकाश देता है, शक्ति देता है। तो अगर बच्चे की क्लीन और क्लियर बुद्धि होती है तो कोई बच्चे कोई कोई वो उस सकाश को लेते हैं और शक्ति का अनुभव करते हैं और उस परिस्थिति पर विजय प्राप्त करके उससे बाहर हो जाते हैं। शक्ति बाबा ने दी, लेकिन दी बच्चे को। लेकिन कोई कोई बच्चे, ज्यादातर बच्चे अपने कार्य में ही संलग्न रहते हैं, उनकी बुद्धि कभी फ्री नहीं होती है। तो बाबा सकाश तो देता है लेकिन वो रिसीव नहीं कर पाते। ट्रांसमीटर तो पावरफुल है लेकिन रिसीवर सेट ही अगर शक्तिशाली नहीं होगा, हमारा टीवी खराब होगा, तो जितना भी रिले अच्छा हो रहा होगा उसके अंदर खराब खराब आएगा। तो इसीलिए अपने लिए हम, बाबा का इतना बिजी शेड्यूल होता था, कहीं मकान बन रहे हैं, हर बच्चे को पत्र लिखना है, कुछ करना है, लेकिन अपने लिए बाबा कितनी बार बस गए एकांत में बैठे हैं। हम लोग देखते थे कोई नहीं है, चलो बाबा के पास चले, लेकिन बाबा इस देह से परे जैसे शिव बाबा के साथ रूहान कर। तो बाबा यही एक्सपेक्ट करता है हम सब भी ब्रह्माचारी बन कर के कोई समय रखेंगे, तो अगर कोई परिस्थिति आने वाली भी होगी तो उसका बाबा एहसास करा देगा पहले से ही। और हमारी फिर जो शरीर छोड़ना होगा ना, उसका नाम है क्या, इच्छा मृत्यु। हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़े हैं। अगर हमने भी दुनिया की तरह शरीर छोड़ा, बम गिरा यहाँ पर, ये बिजली कड़की, वो हुआ, फ्लड आ गया, बहुत कोई प्रकृति की बात हो गई, कोई भी साधनों की बात हो गई, बम गिर, तो तब हम में और दुनिया वालों में फर्क क्या रहा। हम तो महान पवित्र डबल पवित्र आत्माएं हैं, हमारी आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र ये होता जा रहा है, हम श्री लगाने के अधिकारी बनते जा रहे हैं। लेकिन ये तभी होगा बाबा की मदद के बिना नहीं। इसीलिए बाबा ने कई बार कहा है कोई परिस्थिति आए तो बच्चे बस आह्वान करो, मीठे बाबा, बाबा मेरे साथी, आओ आओ बाबा, मुझे इसमें मदद करो। हमने तो 50 बार अनुभव करा है कि ऐसी ऐसी विकट परिस्थिति आई, बाबा का आह्वान किया, तुरंत कोई भी आत्मा को निमित्त बना के बाबा ने उस परिस्थिति से पार कर दिया, बाहर ले गए। बस अंत में ऐसी बहुत कठिन परिस्थितियां आएंगी और हम अपनी शक्ति से संभवतः उस पर संपूर्ण विजय न प्राप्त करें, तो एक तो बाबा का आवाहन जरूरी है और बाबा को भी मालूम होना चाहिए इस बच्चे का ये टाइम फ्री है, 10 बजे से लेकर 10:15 तक, मानो बाबा ये मेरा टाइम आपके लिए रिजर्व है, बाबा तक भी पहुंचता है। तो उस खाली टाइम में बाबा हमें विशेष टच करेगा कि कैसे किस परिस्थिति में जो आने वाली स्थिति है पार हम सदा विजयी हो सके। तो अंत में जब ये देखा और बाबा बस धीरे धीरे बाबा का हाथ ढीला हो गया और फिर डॉक्टर भी आया, डॉक्टर ने तो जो कार्य करना था देखा अच्छी तरीके से, सर्टिफिकेट देके डॉक्टर तो चला गया। लेकिन बाबा ने आत्मा को तो पवित्र कर ही लिया, लेकिन साथ साथ इस शरीर के पांच तत्वों के शरीर को भी ऐसा पवित्र कर लिया कि तीन दिन तक बाबा का रखा रहा शरीर। सब कहते थे 18 जनवरी को बाबा ने शरीर छोड़ा, 18 की रात, 19 का दिन, 19 की रात, 20 का दिन, 20 की रात, 21 को भी दोपहर के बाद बाबा का संस्कार किया गया। लेकिन तब तक भी बाबा का शरीर जैसे चमकता रहा, कोई कालापन नहीं, कोई दुर्गंध नहीं। ये है प्रकृति पर विजय, जो कि हमारा जानकी दादी ने भी अनुभव किया और उन्होंने ही बताया बस इस मिलेनियम का 2000वां शुरू हो रहा था। हमेशा ही बाबा 31 दिसंबर को आते हैं, तो 31 दिसंबर को अव्यक्त बाप दादा यहाँ आने वाले थे। दादी जानकी विदेश से आई थी, लेकिन लोटस अहमदाबाद में उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई, डॉक्टरों ने भी बोल दिया हाथ खड़े कर दिए और अब कुछ नहीं हो सकता। यहाँ भी समाचार आया तो यहाँ पर उनके समाचार को फिर बाबा को सुनाया निर्वैर भाई और दादी प्रकाशमणि जी ने कि बाबा ऐसे दादी की तबीयत बहुत खराब है। तो बाबा का ने एक ही शब्द बोला, हाँ, सन 2031 दिसंबर की बात है, 1999 का एंड और 2000 शुरू हो रहा था। उस बच्ची को कुछ नहीं होगा, वो प्रकृति जीत है, अभी तो उसे बहुत सेवा करनी। प्रकृति जीत दादी जानकी को बताया और उसके बाद हमने देखा कहां 2000 का साल और कहां 2020 तक कितनी दादी ने सेवा की, कितनी जगह गए। तो ये प्रकृति जीत का लक्षण है, ये प्रकृति से बना शरीर। समय बहुत हो गया है और मैं यही आशा करना चाहूंगा कि बस जो जो साकार बाबा ने करके दिखाया करा, हम भी वैसे ही बने, अपने संस्कारों में परिवर्तन करके। कोई भी विघ्न, कोई भी परिस्थिति आती है, हम अपनी स्वस्थिति से उसे पार कर लें, विजयी बन जाए। इसी लक्ष्य के साथ ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
Oh, man.